लाउडेटर यीशु क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर, अमानवीय जीवन परिस्थितियों में हाशिए पर जीवन यापन करने वालों के लिए हम आपसे याचना करते हैं, ताकि सरकारी, गैर सरकारी और कलीसियाई संस्थाओं द्वारा उनकी अनदेखी न की जाए और न ही उन्हें कम महत्व का समझा जाए। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है कलीसियाई दस्तावेज एक अध्ययन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की। श्रोताओं, हम अपने मंगलवारीय कार्यक्रम कलीसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत संत पापा फ्रांसिस के प्रेरितिक प्रबोधन एवंजेली गौडियम पर चर्चा कर रहे हैं। संत पापा फ्रांसिस ने सामाजिक धर्म शिक्षा की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए वर्तमान विश्व में नवीन सुसमाचार प्रचार के संबंध में प्रेरितिक प्रबोधन एवंजेली गौडियम प्रकाशित किया। 24 नवंबर सन 2013 को प्रकाशित किए गए अपने इस प्रेरितिक प्रबोधन में संत पापा फ्रांसिस पूरी कलीसिया से यह आग्रह करते हैं कि हम सभी ख्रिस्तीय अपने जीवन में सुसमाचार के एक नए अध्याय की शुरुआत करें। वे कलीसिया को शिष्यों का एक समुदाय घोषित करती जो सदैव प्रेरिताई के कार्य हेतु बुलाई गई है। एवंजेली गौडियम संत पापा फ्रांसिस के परमाध्यक्षीय काल के विशेष मुद्दों पर प्रकाश डालता है, जहां हम ख्रिस्तियों का गरीबों के प्रति कर्तव्य, आर्थिक, राजनैतिक और अन्य कानूनी बातों के संबंध में उत्तरदायित्व का जिक्र पाते हैं। वे सामाजिक प्राथमिकताओं की ओर हमारा ध्यान आकर्षित कराते हैं। श्रोताओं, हमने एवंजेली गौडियम के 5वें अध्याय की शुरुआत की है, जो पवित्र आत्मा से पूर्ण सुसमाचार प्रचारकों का जिक्र करता है। सुसमाचार प्रचार करना ईश्वर के राज्य को विश्व में प्रकट करना है। हम सभी अपने जीवन के द्वारा जीवनदायी ईश्वर की सुसमाचार का प्रचार करने को बुलाए गए हैं और इसके लिए हमें पवित्र आत्मा प्रेरित करते हैं। हमारे जीवन के द्वारा अच्छे कार्यों का निष्पादन हम में व्याप्त अच्छाई का परिणाम नहीं अपितु पवित्र आत्मा की प्रेरणा है, जहां वे हमें हृदय की गहराई में नेक कार्य करने को उत्प्रेरित करते हैं। श्रोताओं, हमने अपने विगत प्रसारण के अंतिम भाग में पुनर्जीवित यीशु और पवित्र आत्मा के रहस्यात्मक कार्यों का जिक्र करते हुए कहा कि अपने प्रेरितिक उत्साह को सजीव बनाए रखने हेतु हमें पवित्र आत्मा में सुदृढ़ विश्वास की जरूरत है, क्योंकि यह वे हैं जो हमारी कमजोरियों में सहायता करते हैं और इसके लिए हमें चाहिए कि हम निरंतर पवित्र आत्मा का आह्वान करें। वे हमें उन बातों से चंगाई प्रदान करते हैं जो प्रेरितिक प्रयास को क्षीण बनाता है। श्रोताओं, मध्यस्थ प्रार्थना का प्रभाव प्रार्थना का वह प्ररूप है जो हमें विशेष रूप से सुसमाचार प्रचार और दूसरों की भलाई करने हेतु अग्रसर करता है। हम इसे निवेदन की प्रार्थना कहते हैं। हम एक क्षण के लिए संत पौलुस के हृदय में झांक कर देखें कि उनकी प्रार्थना कैसी थी। यह व्यक्तियों से भरा था। मैं हमेशा अपनी हर प्रार्थना में आनंद के साथ आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि आप मेरे हृदय में बस गए हैं। यहाँ हम इस बात को देख सकते हैं कि निवेदन की प्रार्थना हमें सच्चे चिंतन से नहीं भटकाती है, क्योंकि सच्चे विचार मंथन में हम सदैव दूसरों के लिए एक स्थान को पाते हैं। यह मनोभाव हमारे लिए कृतज्ञता की एक प्रार्थना बनती है, जहां हम दूसरों के लिए ईश्वर का धन्यवाद अदा करते हैं। सर्वप्रथम मैं यीशु ख्रिस्त में आप सबों के लिए ईश्वर का धन्यवाद अदा करता हूं। यह निरंतर कृतज्ञतापूर्ण भावना की अभिव्यक्ति है। मैं आपके लिए सदैव ईश्वर का धन्यवाद अदा करता हूं, क्योंकि यीशु ख्रिस्त में आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त हुई है। जब जब मैं आप लोगों को याद करता हूँ, मैं अपने ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ। निस्संदेह नकारात्मक उदासी से दूर यह एक आध्यात्मिक देखने का नजरिया है, जिसकी उत्पत्ति गहरे विश्वास से होती है, जो इस बात को स्वीकारना है कि ईश्वर दूसरों के जीवन में क्या कर रहे हैं। वहीं यह कृतज्ञता है जो हमारे हृदय से प्रवाहित होती है, जो दूसरों का ख्याल करती है। जब सुसमाचार प्रचार का आधार प्रार्थनामय जीवन होता है, तो उनका हृदय अधिक खुला रहता, वे आत्म मोह से मुक्त रहते, दूसरों की भलाई करने को तैयार रहते और अपने जीवन को दूसरों के संग साझा करते हैं। श्रोताओं, महान नर और नारियां ईश्वर के संग वृहद निवेदनकर्ताओं के रूप में थे। विनय की प्रार्थना अपने में एक खमीर की भांति त्रित्वमय ईश्वर के हृदय में होती है। यह पिता के हृदय में प्रवेश करने का एक मार्ग है, जहां हम नए आयामों की खोज करते हैं, जो ठोस परिस्थितियों को प्रकाशित करती और उन्हें परिवर्तित करती है। हम यह कह सकते हैं कि ईश्वर के हृदय को हमारी निवेदन प्रार्थनाएं स्पर्श करती हैं, यद्यपि हकीकत में वे सदैव हमारे लिए वहां उपस्थित हैं। हमारे निवेदनों को ईश्वर की शक्ति, उनका प्रेम और उनकी निष्ठा प्राप्त होती है, जिसे हम लोगों के बीच में स्पष्ट पाते हैं। मरियम सुसमाचार प्रचार की माता हैं, और इसलिए पवित्र आत्मा से मरियम लोगों के बीच में सदैव उपस्थित रहती हैं। वे शिष्यों के संग मिलकर पवित्र आत्मा के आगमन हेतु प्रार्थना करती हैं, और यह पेंतेकोस्त के दिन प्रेरित कार्य की शुरुआत को संभव बनाता है। वह कलीसिया की माता हैं, जो सुसमाचार का प्रचार करती हैं, और उनके बिना हमने सुसमाचार के अर्थ को सही में कभी समझने के योग्य नहीं हो पाएंगे। श्रोताओं, क्रूस में जब यीशु अपने शरीर में नाटकीय रूप में दुनिया के पाप और ईश्वर की करुणा को वहन करते, तो वे अपने चरणों के निकट अपनी माता और अपने मित्रों की सांत्वनामयी उपस्थिति का अनुभव करते हैं। उस निकट परिस्थिति में अपने पिता के द्वारा दिए गए कार्यों को पूरी तरह पूरा करने के पूर्व यीशु ने मरियम से कहा, भद्री, यह आपका पुत्र है। और तब उन्होंने अपने प्रिय शिष्य से कहा, यह तुम्हारी माता है। मरते हुए यीशु ख्रिस्त के ये शब्द मुख्य रूप से उनकी धार्मिकता और अपनी माता के लिए चिंता की अभिव्यक्ति नहीं है, बल्कि वे रहस्योद्घाटन करने वाले एक स्वरूप, जो हमारे लिए मुक्ति विधान के एक विशेष रहस्य को प्रकट करता है। यीशु ने अपनी माता को हमारी माता के रूप में दे दिया। केवल ऐसा करने के बाद ही वे यह कहते हैं, सब कुछ पूरा हो चुका है। क्रूस के नीचे नई सृष्टि के सर्वोच्चतम क्षण में ख्रीस्त हमें मरियम की ओर ले चलते हैं। उन्होंने हमें उनकी ओर लाया, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि हम एक माँ के बिना ही अपने जीवन की राह में चलें, और हमारे लोग माता की इस छवि में सुसमाचार के सभी रहस्य को देखते हैं। ईश्वर कलीसिया को नारीत्व की निशानी के बिना छोड़ना नहीं चाहते थे। मरियम, जिन्होंने उन्हें बड़े विश्वास के साथ इस दुनिया में लाया, बची हुई उनके संतानों को भी, जो ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करते और उनका साक्ष्य यीशु के लिए देते हैं। माता मरियम के संग कलीसिया और विश्वासियों के साथ हमारा निकट संबंध, जो इस सत्य पर टिका है कि हम में से हर कोई अपने रूप में यीशु ख्रिस्त को प्रकट करते हैं, जैसे कि स्टेल्ला के धन्य इसाहक ने इसे अति सुंदर रूप में अभिव्यक्त किया है। प्रेरणा से लिखे गए धर्म ग्रंथों में वैश्विक अर्थ में कुमारी माता के प्रति व्यक्त किए गए विचार, जहाँ व्यक्तिगत रूप में कलीसिया को कुमारी मरियम के रूप में समझा जाता है, एक तरह से हर ख्रिस्तीय ईश वचन के अनुरूप एक वधु की भांति देखा जाता है। ईश्वर की एक माता, पुत्र और बहन, जो अपने में कुमारी और फल वाहिनी होती। ख्रिस्त 9 महीनों तक मरियम के गर्भ रूपी संदूक में रहे। वे कलीसिया के विश्वास रूपी संदूक में युगानुयुग निवास करते हैं। वे हर विश्वासी के हृदय में ज्ञान और प्रेम की तरह सदैव निवास करते रहेंगे। श्रोताओ, हमने अपने मंगलवारीय कार्यक्रम कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत संत पापा फ्रांसिस के प्रेरितिक पत्र एवंजेली गौडियम पर एक चर्चा सुनी। हम आगे भी इस पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे।
वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। पोप फ्रांसिस ने परमाणु हथियार रखने को अनैतिक कहा है क्योंकि इससे दुर्घटना होने का बड़ा खतरा होता है। संत पापा ने 26 सितंबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, परमाणु हथियार रखना अनैतिक है। जैसा कि संत पापा जॉन 23वें ने अपने प्रेरितिक विषय पत्र पाचिम इन तेरिस में गौर किया है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आग किसी संयोग एवं अप्रत्याशित परिस्थिति में शुरू हो सकती है। उन्होंने कहा, हम परमाणु हथियार के खतरे के सामने हमेशा पराजित हैं। पोप फ्रांसिस के अगले प्रेरितिक प्रबोधन का शीर्षक होगा लौदाते देयुम, जिसको पोप ने उस समय प्रकट की जब वे लातिनी अमेरिका की यूनिवर्सिटी के रेक्टरों से वैटिकन में मिले और उन्हें फेंकू संस्कृति के खिलाफ जोरदार चेतावनी दी। संत पापा ने 21 सितंबर को लातिनी अमेरिका और करेविया की यूनिवर्सिटी के अध्यक्षों से व्यक्तिगत मुलाकात की। उनसे उन्होंने आज की वास्तविकताओं एवं चुनौतियों से युवाओं के निर्माण में रचनात्मक होने का आग्रह किया। धर्मदर्शों ने पोप से वातावरण एवं जलवायु संबंधी मुद्दों पर सवाल पूछे, जिसके जवाब में उन्होंने फेंकने वाली संस्कृति या परित्याग की संस्कृति की निंदा की। उन्होंने बतलाया कि यह प्राकृतिक संसाधनों के दुरुपयोग की संस्कृति है जो प्रकृति को पूर्ण विकास में साथ नहीं देती और उसे जीवित रहने नहीं देती है। उन्होंने कहा, परित्याग की यह संस्कृति हम सभी को नुकसान पहुंचाती है। संत पापा ने उन्हें जागरूकता का नेटवर्क बनाने का आग्रह किया तथा आशा को पुनः प्राप्त करने और व्यवस्थित करने पर जोर दिया। संत पापा फ्रांसिस ने विभिन्न कलीसियाओं के धर्मगुरुओं को निमंत्रण दिया है कि वे 30 सितंबर की जागरण प्रार्थना में भाग लें, जिसमें सिनट की 16वीं महासभा के लिए प्रार्थना की जाएगी। संत पापा फ्रांसिस सिनट महासभा के पूर्व शनिवार 30 सितंबर को क्रिस्त एकता जागरण प्रार्थना की अगुवाई करेंगे। प्रार्थना में कुस्तुनतुनिया के प्राधिधर्माध्यक्ष बर्थोलोम्यो प्रथम एवं कैंटरबरी के महाधर्माध्यक्ष जस्टिन वेल्बे एवं कई अन्य कलीसियाओं के धर्मगुरु और साथ ही साथ हजारों क्रिस्त उपस्थित होंगे। शनिवार की शाम की प्रार्थना सभा का उद्देश्य 4 से 29 अक्टूबर को वैटिकन में होने वाली धर्माध्यक्ष धर्म सभा की 16वीं महासभा के कार्य को पवित्र आत्मा को सौंपना है, जिसमें ईश्वचन को सुनना, स्तुति और निवेदन की प्रार्थना, तेजे गीत एवं मौन प्रार्थना शामिल होंगे। जागरण प्रार्थना को वैटिकन मीडिया द्वारा 8 भाषाओं में यूट्यूब चैनल से लाइव प्रसारित किया जाएगा। विभिन्न देशों के हजारों युवा 29 सितंबर से 1 अक्टूबर तक रोम के आसपास कार्यशालाओं और सभाओं में भाग लेंगे, जिसमें वे शनिवार को जागरण प्रार्थना और उससे पहले दोपहर में संजोन लातेरन महागिरजाघर में स्तुति एवं उपासना की प्रार्थना में शामिल होंगे। युवाओं की कार्यशाला में शरणार्थियों एवं अन्य कलीसियाओं और अन्य धर्मों के प्रतिनिधियों के अनुभवों को सुनना भी शामिल है। वे हाशिए पर जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए शहर के मिशन का दौरा, हमारी परंपराओं की विविधता में ख्रिस्त को पहचानना, ख्रिस्ती एकता पैनल चर्चा और सृष्टि की देखभाल आदि कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसी भावना से 30 सितंबर को दुनिया भर में 200 से अधिक सामूहिक प्रार्थनाएं आयोजित की जाएंगी, जिसमें विभिन्न कलीसियाओं के ख्रिस्ते अपने अपने देशों में एक साथ प्रार्थना एवं चिंतन करेंगे। ऑस्ट्रेलियाई आदिवासी आवाज जनमत संग्रह न केवल एक राजनीतिक मुद्दा है बल्कि एक नैतिक मुद्दा भी। उक्त बात ऑस्ट्रेलिया के कार्तिक धर्माध्यक्षों ने कही है। ऑस्ट्रेलिया आदिवासी आवाज जनमत संग्रह 2023, जिसको 14 अक्टूबर को निर्धारित किया गया है, उसके पूर्व ऑस्ट्रेलिया के कार्तिक धर्माध्यक्ष सम्मेलन ने एक बयान जारी किया है एवं वोट देने वालों को निमंत्रण दिया है कि इस मुद्दे पर वे दूसरों की चिंताओं को सुने। ऑस्ट्रेलियाई लोग इस बात पर मतदान करेंगे कि क्या ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को मान्यता देकर और आदिवासी एवं टॉरेस स्ट्रेट द्वीप निवासी की आवाज नामक संस्था की स्थापना करके संविधान में बदलाव किया जाए। अपने बयान में धर्माध्यक्षों ने कहा है कि मुद्दा प्रस्तावित संवैधानिक परिवर्तन के आसपास सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि नैतिक और नीतिपरक भी है। जनमत संग्रह पर धर्माध्यक्ष लोगों को हाँ या ना पर वोट देने की सलाह नहीं दे रहे हैं, बल्कि वे मतदाताओं से अपने देश के अतीत, वर्तमान और भविष्य पर विचार करने और उसे समझने का आग्रह कर रहे हैं। धर्माध्यक्षों ने ऑस्ट्रेलिया के लोगों को प्रोत्साहन दिया है कि वे दूसरों से बात करें और उनकी उम्मीदों एवं भय को सुनें, जिसमें आदिवासी और टॉरेस स्ट्रेट द्वीप के निवासी शामिल हैं। वे लोगों से ऐसे तरीके से कार्य करने का आह्वान करते हैं जो आदिवासी और टॉरेस स्ट्रेट द्वीप के लोगों को होने वाले नुकसान का विवरण करने के लिए प्रतिबद्ध हों और उन्हें अपनी क्षमता तक पहुँचने की अनुमति दें। ऑस्ट्रेलिया के धर्माध्यक्षों ने अमेज़न के आदिवासियों के लिए संत पापा फ्रांसिस के शब्दों को याद किया है, जिसमें उन्होंने कहा था, वे हमारे प्रमुख संवाद के भागीदार हैं, जिनसे हमें सबसे अधिक सीखना है, उनके शब्द, उनकी आशाएं और उनके भय, अन्यथा परिणाम एक बार फिर कुछ लोगों द्वारा कुछ लोगों के लिए तैयार की गई योजना मात्र रह जाएगा। धर्माध्यक्षों ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी लोगों के लिए यही कहा जा सकता है। करीब 2900 से अधिक जातीय आर्मेनियाई लोग नगोर्नो काराबाग क्षेत्र से भाग गए हैं। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि लगभग 1,20,000 लोग क्षेत्र छोड़ सकते हैं। पोप फ्रांसिस ने 2 सितंबर को एक वीडियो कॉल के माध्यम से केरल के मॉन्सिनियर जॉर्ज गुआकात की 95 वर्षीय दादी एवं रिश्तेदारों से बात करते हुए उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया। मॉन्सिनियर जॉर्ज, जिनकी 95 वर्षीय दादी सुसामा अंतोनी से पोप फ्रांसिस ने 2 सितंबर को वीडियो कॉल के माध्यम से बात की, वैटिकन के राज्य सचिवालय के अधिकारी हैं और पोप की विदेश यात्राओं के प्रबंधक समिति के सदस्य के रूप में सेवारत हैं। जुलाई 2022 में कनाडा की प्रेरित यात्रा के दौरान फादर जॉर्ज गुआकात ने जिक्र किया था कि उनकी दादी कोविड-19 से संक्रमित हैं। उसी समय से संत पापा फ्रांसिस फादर गुआकात से उनके हालचाल के बारे पूछते रहते हैं और पिछले दिनों मंगोलिया की प्रेरित यात्रा के दौरान उनसे बात करने की इच्छा जाहिर की थी। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।